मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 7 नवंबर 2016 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इससे पहले कि हम आज के विषय पर बात करना शुरू करें, आप सबके लिए एक सूचना है और यह एक अच्छी सूचना है। सूचना यह है मित्रों कि आप में से कोई भी यदि अपने लाइफ से रिलेटेड किसी इशू पर सलाह लेना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, समस्याओं के समाधान चाहता है, तो उसके लिए मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने अपनी सहमति दी है और वे इससे पहले भी इस तरह के काम से जुड़ी रही हैं, संस्थाओं से भी जुड़ी रही हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी जुड़ी रही हैं। तो मैं आपको डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर बताने जा रहा हूं। आप यह मोबाइल नंबर नोट करके अपने पास रख सकते हैं और जब भी आप कोई जरूरत महसूस करें उनसे इस मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। मित्रों, बस एक तथ्य का आपको ध्यान रखना होगा और वह यह है कि अभी जो समय निश्चित किया गया है इसके लिए वह है दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच। इस दौरान आप अभी मैं जो मोबाइल नंबर बोलने जा रहा हूं इस पर सीधे उनसे बात कर सकते हैं। तो मित्रों, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। और मित्रों, समय है अभी दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक। तो मित्रों, इस एक अच्छी सूचना के बाद कि अब वो फिर से रेडी हैं आप लोगों को सलाह देने के लिए और आप महसूस करेंगे बातचीत करने के बाद कि आपको उससे लाभ की स्थिति निश्चित रूप से होगी। अब हम लोग आते हैं आज के लाइफ मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट पर। दोस्तों, जब आज मैं सुबह के अखबार पढ़ रहा था, आप लोगों ने भी अखबार पढ़े हैं, तो एक खबर जो पिछले 2-4 दिन से चलती ही आ रही है और आज सुबह पढ़ने के बाद सच पूछिए तो मन एक बहुत ही विचित्र किस्म के अवसाद भी, आक्रोश भी, उदासी भी, भ्रमित भी की स्थिति में फंस गया। हालांकि खबर छोटी सी ही थी, शायद अब जब चूंकि समस्या बड़ी दिखाई दे रही है तो वो खबर बड़ी बन रही है। आप कह सकते हैं कि इसमें इतने ज्यादा उद्वेलन की जरूरत भी क्या थी, ऐसी क्या बात थी, लेकिन मित्रों मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे विश्वास है कि आप लोगों में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। मित्रों, समाचार कुल मिलाकर यही है जो अब एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समाचार जैसा बन गया है और वह है दिल्ली में अभी जो प्रदूषण की स्थिति हो गई है। एक अखबार ने तो यहां तक लिखा कि प्रदूषण के मापन के लिए जो मशीन लगाई गई थी उस मशीन ने भी जवाब दे दिया, यानी कि उसमें भी कितना प्रदूषण हो गया है इसका मापन नहीं आ पाया, मतलब उससे भी परे थे कि मशीन बनाने वाले ने जो कल्पना की थी कि इतना ही तक प्रदूषण होगा, उससे भी ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में रहा। दोस्तों, मैं इसके तथ्यों पर नहीं जा रहा हूं, हम तो लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लाइफ को ही देखें और उसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर बातें करें। आप देख रहे हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्टिव है, केंद्र सरकार एक्टिव है, राज्य सरकारें भी एक्टिव हो गई हैं। राज्य सरकारें मतलब दिल्ली की सरकार और आसपास के जो दूसरे पड़ोसी राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी एक्टिव हो गई हैं। स्कूल बंद किए जा चुके हैं 5 दिन के लिए। एडवाइजरी जारी की जा रही है कि यदि आप अपने घर से निकलें तो बहुत अच्छी क्वालिटी का, स्पेशली मेंशन किया जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी का मास्क लगाकर निकलें, ज्यादा अच्छा हो कि घर से निकले ही नहीं, और बाहर वालों को कहा जा रहा है कि बेहतर होगा कि आप अभी कुछ दिनों तक दिल्ली न जाएं। और ये हो रहा है कि कैसे इसको रोका जाए, तो कुछ व्यवस्था हो रही कि कृत्रिम बारिश कराई जाए, निर्माण कार्य रोक दिए जाएं, ऑड इवन पॉलिसी को फिर से लागू किया जाए, इस तरह की बातें हो रही। आप देख रहे हैं कि संकट कितना बड़ा है। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि वह संकट जो आज दिल्ली के सामने दिखाई दे रहा है और जिसको लेकर के हर कोई इतनी बुरी तरह से परेशान है, और जो संस्थाएं और सरकार और न्यायाधिकरण प्राधिकरण जो परेशान है वो तो हैं ही, हम खुद भी परेशान हैं। आफ्टर ऑल हमारे बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चे जो इतने कोमल हैं, जो जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, ये हम हैं जो हम दूसरी बातों को तो छोड़िए, हम उन्हें पता नहीं महंगी गाड़ियां दिला रहे हैं, हम उन्हें महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिंदगी का जो सार है, जो सबसे बड़ा तत्व है कि उन्हें हम शुद्ध वायु प्रोवाइड कर सके, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये प्रदूषण जो दिवाली के दिन इतने खतरनाक स्तर पर पहुंचना शुरू हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल आप इस जिम्मेदारी वाले तत्व पर की खोज कीजिए, इसका उत्तर ढूंढिए। दोस्तों, क्या सरकार जिम्मेदार है जो भी परेशान हो रही है? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल जिम्मेदार है? क्या राज्य सरकारें जिम्मेदार है? नो डाउट कि एक सरकार एक अधिकार होने के नाते उनकी एक दूसरे किस्म की जिम्मेदारियां हैं। उनकी जिम्मेदारियों की शुरुआत तब होती है जब प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण फैलाने वाला कौन है? हम हैं। और मजेदार बात यह है कि हम जिन बच्चों के लिए अभी सब कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं, बच्चों के लिए नौकरी कर रहे हैं, बच्चों के लिए ही सोच रहे हैं, अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख करके बच्चों को बड़े बड़े शहरों में भेजकर पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों की जिंदगी के जीने के लिए जो शुद्ध हवा चाहिए उस पर हमारा कोई विचार ही नहीं है। हम खुद भी पटाखे फोड़ने में लगे हुए हैं और बच्चों के लिए पटाखे ला ला कर दे रहे हैं कि बेटे एंजॉय करो। जिंदगी की कीमत पर इस एक दिन को, एक दिन के कुछ घंटों को एंजॉय करो और पूरे के पूरे अपने वातावरण को जहरीला बना दो। तो दोस्तों, यहां पर आकर के एक सवाल खड़ा होता है जो बहुत ही, मैं समझता हूं, मौजू सवाल है और बहुत ही सच पूछिए तो एक आईना दिखाने वाला सवाल है। हम कहां हैं? हम क्या कर रहे हैं? कभी हम सच में अपने बारे में सोचते हैं या हम सिर्फ दूसरों की ही आलोचना करने में लगे रहते हैं, दूसरों पर ही उंगली उठाने में लगे रहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, फलाना ये नहीं कर रहा है? कभी इस पर भी तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने दायित्वों को निभा रहे हैं? मित्रों, नो डाउट कि आप कह सकते हैं कि भारत महान देश है और है, कह सकते हैं कि बात नहीं है। दार्शनिक दृष्टि से तो, सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। उसके लिए हमारे सामने पास लिटरेचर है, हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जब व्यवस्थाओं की बात आती है तो सच पूछिए तो कहीं ना कहीं शर्म सी महसूस होती है, कहीं ना कहीं गर्दन झुकानी पड़ती है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीजों का जब रख करके देखें, सापेक्ष मूल्यांकन करें, तो सच में फिर ये लगता है कि हमारी जो इतनी प्राचीन समृद्ध जो विरासत रही है, उस विरासत का इस्तेमाल हम अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के लिए कितना कर रहे हैं। गंदगी, स्वच्छता अभियान गांधी जी ने कब शुरू कर दिया था? आज सोचिए कि उस स्वच्छता अभियान को 100 साल हो चुके हैं। गांधी जी जब पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्या जिम्मेदारी लेंगे तो उन्होंने स्वच्छता की जिम्मेदारी ली थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में उल्लेख है, उन्होंने कहा था मैं टॉयलेट साफ करूंगा। 100 साल तो हो गए लगभग ऑलमोस्ट 1-2 साल कम रह गए होंगे बस। उससे 100 साल में हम गांधी जी, जिनको हम अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, देखिए पिता तो हमारे लिए आदर्श होता है हमारी अपनी ही संस्कृति में, तो जिस राष्ट्रपिता के आदर्श में स्वच्छता इतनी बड़ी चीज थी, फिर सोचना पड़ता है कि हमने उस आदर्श का कितना पालन किया। हम अपने ही वातावरण के हमारे आसपास का जो वातावरण है उसके प्रति स्वच्छता के भाव से कितने संचालित होते हैं, हम कितने संवेदनशील हैं, हम सच में कितनी जिम्मेदारी के साथ अपने इस स्वच्छता के दायित्व को निभा रहे हैं। मैंने मित्रों अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है, कोट पहने हुए हैं, टाई लगाए हुए हैं और मेरी समझ से शायद 50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठे हुए हैं और पीछे बैठे हुए उनके परिवार के सदस्य, ये पता नहीं आजकल क्या क्या दुनिया भर के पैकेट की चीजें आ गई हैं, इनको खाते हैं और जैसे ही खाली होता है तो पार्किंग में चलती हुई गाड़ी में उसे बाहर फेंक देते हैं, उछाल देते हैं, जैसे कि उनके पीछे पीछे नगर निगम या नगर पालिका की कोई गाड़ी चली आ रही है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के फेंके हुए कचरों को इकट्ठा करे। और जब कचरों का ढेर लग जाता है तो फिर हम जनहित याचिका दायर करते हैं कि कचरा उठ नहीं रहा है। हम खुद समस्या पैदा करते हैं, उन समस्याओं से खुद प्रभावित होते हैं और जब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है वो चीज तो कोर्ट में चले जाते हैं और राज्य को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। दोस्तों मैं राज्य को उसके दायित्व से अलग करने की बात नहीं कह रहा हूं, उसकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ यहां ये बात कह रहा हूं हम खुद के लिए भी तो एक कटघरा बनाएं और खुद भी तो कभी कटघरे में खड़े हों। हम अपने व्यवहार के बारे में, अपने आचरण के बारे में भी तो कभी विचार करें। मित्रों मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए और इसमें अब देरी भी नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों अब तो इसमें लिटरेसी रेट का भी सवाल नहीं होता कि साहब केवल पढ़े लिखे लोग ही कर पाएंगे। मैं अभी पढ़े लिखे लोगों का भी आपको किस्सा बता दिया है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। सच पूछे तो हमारी संस्कृति में तो ये पवित्रता, ये स्वच्छता, ये भाव, ये श्रद्धा, ये सब श्रद्धा ही है, प्रकृति के प्रति अद्भुत प्रेम, पूजा की भावना प्रकृति के प्रति, ये तो हमारे में, हमारी चेतना में मौजूद है। इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई, डिग्री और शोध की जरूरत नहीं है। हमें याद भी है, ये सारी चीजें हमें याद है, हम बातें भी करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं और दूसरे अगर नहीं करते हैं तो अपनी उंगली भी उठाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट, जो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यजनक जो बात है वो ये कि वह हमारी उंगली जो दूसरों की ओर उठती है अपनी ओर कभी नहीं उठती। और मुझे लगता है कि जिस दिन उस उंगली की दिशा बदल जाएगी, अपनी ओर उठने लगेगी, निश्चित रूप से दोस्तों इस देश की दशा भी बदल जाएगी। तो मित्रों एक अनुरोध मेरा अपने सभी प्रिय श्रोताओं से है कि हम अपने को देखें, अपने आसपास की चीजों को देखें और जिनकी हम आलोचना करते हैं कोशिश करें कि कम से कम उन कामों को तो हम खुद न करें। हमारे चरित्र में बहुत बदलाव आ जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि हमारे व्यक्तित्व का बहुत ही जबरदस्त उत्थान होने लगेगा और हमारे जिंदगी का जो रंग रूप है वो बेहतर होने लगेगा। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।